यशाया अध्याय 34 पद 1। हे जाति जाति के लोगों, सुनने के लिए निकट आओ, और हे राज्य राज्य के लोगों, ध्यान से सुनो। पृथ्वी भी और जो कुछ उसमें है, जगत और जो कुछ उसमें उत्पन्न होता है, सब सुनो। पुराने नियम में महाक्लेश के लिए प्रयोग की गई शब्दावली है यहोवा का क्रोध। यशाया अध्याय 34 पद 2। यहोवा सब जातियों पर क्रोध कर रहा है, परमेश्वर का क्रोध अर्थात महाक्लेश। यशाया अध्याय 34 पद 2 और 3। और उनकी सारी सेना पर उसकी जल जलाहट भड़की हुई है, उसने उनको सत्यनाश होते और संहार होने को छोड़ दिया है। उनके मारे हुए फेंक दिए जाएंगे और उनकी लोतों की दुर्गंध उठेगी और उनके लहू से पहाड़ गल जाएंगे। जेजरील की संपूर्ण घाटी में लहू घोड़ों की लगाम तक बहेगा। यह हर मिगदोन की घाटी के युद्ध में होगा जब यहोवा मनुष्यों की सेनाओं का नाश करेगा। यशाया अध्याय 34 पद 4। आकाश के सारे गण जाते रहेंगे और आकाश कागज की नाई लपेटा जाएगा, और जैसे दाखलता या अंजीर के वृक्ष के पत्ते मुरझाकर गिर जाते हैं, वैसे ही उसके सारे गण धुंधले होकर जाते रहेंगे। यही भविष्यवाणी योएल ने की थी और यीशु ने भी मती 24 में इसकी पुष्टि की है, परंतु योएल अपने दूसरा अध्याय पद 30-31 में आकाश से सितारों के बरसने के बारे में कहता है, जो उस प्रकार गिरेंगे जिस प्रकार की अंजीर के फल गिरते हैं, क्योंकि वे समय से पहले फल जाते हैं। एक भयंकर उल्कापात पृथ्वी पर होगा। एरिज़ोना के रेगिस्तान के नजदीक एक स्थान है जिसका नाम है विंस्लो। वहां एक विशाल गड्ढा है जिसे उल्का का गड्ढा कहते हैं। लगभग सब उल्काएं हमारे वायुमंडल से टकराकर जल जाती है, अतः वे पृथ्वी तक पहुंचती नहीं है। परंतु यदि कोई उल्का पृथ्वी से टकराती है, चाहे वो कैसी भी हो, वो वहां गड्ढा अवश्य बना देती है। एरिज़ोना का ये गड्ढा लगभग 1 मील लंबा है और लगभग 2,000 फुट गहरा है। उसके मुख पर खड़े होकर अंदर झांकना बड़ा ही भव्य दृश्य होता है। 1906 में साइबेरिया में एक उल्का पिंड गिरा था। उसके गिरने से मीलों मील तक चिड़ के पेड़ तिनकों की तरह बिखर गए थे। उसके कारण वहां ऐसा विनाश हुआ कि कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि संभव है कि उसकी रचना अणुओं से भी छोटे कणों से हुई थी, क्योंकि एक साधारण सी उल्का ऐसा विशाल विनाश कर दे। इन कणों की रचना हमारे अणुओं के विपरीत होती है, अर्थात जो पदार्थ हम जानते हैं उनके अणुओं में प्रोटॉन अणु को नाभि में होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभि के बाहर चक्कर काटते हैं, परंतु इन कणों में इलेक्ट्रॉन नाभि में होते हैं और प्रोटॉन नाभि के चक्कर काटते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब इस प्रकार के विपरीत पदार्थों में टकराव होता है, तब विशाल परमाणविक विस्फोट होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में ऐसे पदार्थ पाए जाने की संभावना है और इन दोनों का संयोजन विध्वंसकारी होती है। यही कारण था कि कुछ वैज्ञानिकों के मत अनुसार ये उल्का जो 1906 में साइबेरिया में गिरी थी ऐसा ही एक पदार्थ था, और वे उसके विध्वंस की इसी रूप में व्याख्या करते हैं। यदि ऐसी उल्काओं की बरसात की कल्पना की जाए तो इस पृथ्वी का क्या दशा होगी। वो ऐसे विशाल गड्ढों से पूरी भर जाएगी। जब कोई पुछल तारा पृथ्वी के निकट आता है तब वो हर प्रकार का मलबा सौर मंडल में छोड़ जाता है, और जब पृथ्वी अपनी परिक्रमा करती है तब वो इस मलबे में से होकर निकलती है। पुछल तारे की पूंछ में जो मीलों मील लंबी होती है उसमें अंतरिक्ष का कूड़ा करकट होता है मलबा, उल्काएं, टुकड़े आदि। इन्हीं के कारण पुछल तारे की पूंछ चमकती दिखाई देती है। हैली का पुछल तारा अब तक का सबसे बड़ा पुछल तारा है, और शास्त्रियों का मानना है कि वो तारा फिर से आएगा और वो सूर्य के दूसरी तरफ होगा जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देगा। खगोल शास्त्रियों के विचार में वर्ष में दो बार उल्काओं में क्रियाशीलता होती है। होता यह है कि जब कोई ग्रह वहां से गुजरता है तब उसके वायुमंडल में उल्कापात होने लगता है। चिंता का मुख्य कारण है कि हमारी ओजोन परत पहले ही फ्लोरोकार्बन गैसों के कारण समाप्त हो रही है, और यदि ऐसा भीषण उल्कापात हुआ तो वो पूरी की पूरी ओजोन समाप्त हो जाएगी और पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट किरणों का सीधा बाधा रहित विकिरण आने लगेगा, जिसके कारण हमारी त्वचा जल जाएगी और विकिरण के कारण दाने उभर आएंगे। पिछले वर्ष जल का बपतिस्मा देते समय मैं काफी समय तक पानी में रहा, जिसके कारण मेरे शरीर पर अल्ट्रावायलेट विकिरण के दाने हो गए थे। मैं पानी में बहुत देर तक था और वहां धूप पड़ रही थी। इसका कारण था कि ओजोन की परत पतली होती जा रही है। अणुशास्त्रों के परीक्षण आदि से हमारे वायुमंडल से ओजोन समाप्त होती जा रही है। SST सी सरफेस टेम्परेचर समुद्री सताही तापमान का भी ओजोन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की उल्काओं का तथा फ्लोरोकार्बन गैस का फुवारा। विश्व के अन्य राष्ट्रों ने फ्लोरोकार्बन गैस को वर्जित नहीं किया है, वे आज भी इसका प्रयोग करते हैं। ओजोन समाप्त हो जाने पर सूर्य से आने वाली अल्ट्रा बैंगनी किरणों द्वारा आपकी त्वचा जल जाती है। भविष्यवाणी के दृष्टिकोण से इस प्रकार की बातें बड़ी रोचक लगती है। बाइबल तीव्र उल्कापात की चर्चा करती है कि वे उस प्रकार गिरेंगी जिस प्रकार की बेवक्त लगने वाले जैतून के फल गिरते हैं, आकाश के सितारों का गिरना। ये वास्तव में सितारे नहीं हैं, परंतु हमारी बोलचाल की भाषा में हम इन्हें तारों का टूटना ही कहते हैं। यशाया आम भाषा में कह रहा है कि तारे टूटेंगे, अर्थात उल्कापात बहुत अधिक होगा। इसके संदर्भ में प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 8 में भी लिखा है, उसे सूरज को मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया जाएगा। सूरज की गर्मी के कारण मनुष्य के शरीर पर छाले पड़ जाएंगे, अतः आकाश के तारागण जाते रहेंगे और आकाश कागज की नाई लपेटा जाएगा, और जैसे दाखलता या अंजीर के वृक्ष के पत्ते मुरझाकर गिर जाते हैं। यशाया अध्याय 34 पद 5, क्योंकि मेरी तलवार आकाश में पीकर तृप्त हुई है, देखो वो न्याय करने को एदोम पर। आज ये क्षेत्र सऊदी अरब में है। यशाया अध्याय 34 पद 5 और 6, और जिन पर मेरा शाप है उन पर पड़ेगी। यहोवा की तलवार लहू से भर गई है, वो चर्बी से और भेड़ों के बच्चों और बकरों के लहू से और मेड़ों के गुर्दों की चर्बी से तृप्त हुई है, क्योंकि बोसरा नगर में यहोवा का एक यज्ञ हुआ है। बोसरा एदोम का प्रमुख नगर था। यशाया अध्याय 34 पद 6 से लेकर 8 तक। और एदोम देश में बड़ा संहार हुआ है, उनके संग जंगली सांड और बछड़े और बैल वध होंगे, और उनकी भूमि लहू से भीग जाएगी और वहां की मिट्टी चर्बी से अधा जाएगी, क्योंकि पलटा लेने को यहोवा का एक दिन और सियोन का मुकदमा चुकाने का एक वर्ष नियुक्त है। परमेश्वर का पलटा लेने का दिन सियोन या यरूशलेम के विनाश पर बदला लेने का वर्ष। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसराइल पर आक्रमण करने के लिए हथियारों की खरीद में आर्थिक योगदान सऊदी अरब ही देता है। पीएलओ को हथियार खरीदने के लिए आर्थिक सहयोग देने में सऊदी अरब का सबसे बड़ा योगदान है। इसराइल पर जितने भी आक्रमण हुए हैं उनके पीछे सऊदी अरब का ही आर्थिक सहयोग है। परमेश्वर का बदला चुकाने का एक दिन नियुक्त है। यशाया अध्याय 34 पद 9। और एदोम की नदियां राल से और उसकी मिट्टी गंधक से बदल जाएगी, उसकी भूमि जलती हुई राल बन जाएगी। जब मैं सऊदी अरब के तेल के भंडार के बारे में सोचता हूं और कल्पना करता हूं कि वहां यदि एटम बॉम्ब गिरा दिया जाए तो क्या होगा, मेरा सर चकराने लगता है। इसका परिणाम ऐसा ही होगा। यशाया अध्याय 34 पद 10 से लेकर 12 तक। वो रात दिन ना बुझेगी, उसका धुआं सदैव उठता रहेगा, युग युग वो उजाड़ पड़ा रहेगा, कोई उसमें से होकर कभी न चलेगा। उसमें धनेश पक्षी और साही पाए जाएंगे, और वो उल्लू और कव्वे का बसेरा होगा। वो उस पर गड़बड़ की डोरी और सुनसानी का साहुल तानेगा। वहां ना तो रईस होंगे और ना कोई होगा जो राज्य करने को ठहराया जाए। उसके सब हाकिमों का अंत होगा। सत्य तो यह है कि सऊदी अरब पर 4000 राजकुमार शासन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कुटुंब है और तमाम रिश्तेदार उस संपदा से लाभ उठा रहे हैं जो वहां का तेल है। आम जनता को कोई लाभ नहीं है। यशाया अध्याय 34 पद 13 से लेकर 16 तक। उसके महलों में कटीले पेड़, गढ़ों में बिच्छू पौधे और जाड़ उगेंगे। वो गीदड़ों का वासस्थान और शतुरमुर्गों का आंगन हो जाएगा। वहां निर्जल देश के जंतु सियारों के संग मिलकर बसेंगे और रोवार जंतु एक दूसरे को बुलाएंगे। वहां लीलत नाम जंतु वासस्थान पाकर चैन से रहेगा। वहां उड़ने वाले सांपिन का बिल होगा, वे अंडे देकर उन्हें सवेंगी और अपनी छाया में बटोर लेंगी। वहां गीत अपनी साथिन के साथ इकट्ठे रहेंगे। यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरे हुए ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से ये आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। ऐसा समय आए तो, यशया कहता है, इस पुस्तक को ढूंढकर पढ़ना। जब ये स्थान और वस्तुएं आग में जल रही हो, तब इस पुस्तक को निकालकर पढ़ना, तब तुम समझोगे कि परमेश्वर ने तो पहले ही लिख दिया था कि ऐसा होगा। परमेश्वर के लिखे वचनों में से एक भी शब्द व्यर्थ ना जाएगा। अतः यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, वो चुनौती देता है। हर्ष की बात तो यह है कि हमारे पास यशया की पुस्तक है। जब ऐसा समय आएगा तब हम इस पुस्तक को पढ़ पाएंगे। इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी। आप गीतों को देखेंगे तो पाएंगे कि सबकी जोड़ी होती है। आप कहेंगे कैसी मूर्खता की बात है, प्रत्येक गीत का जोड़ा है। जैसे यशया ने कहा कि एक भी बिना जोड़े का नहीं है, ये सत्य है। यशाया अध्याय 34 पद 17। उसी ने उनके लिए चिट्ठी डाली, उसी ने अपने हाथ से डोरी डालकर उस देश को उनके लिए बांट दिया है। वो सर्वदा उनका ही बना रहेगा और वे पीढ़ी से पीढ़ी तक उसमें बसे रहेंगे।